हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस महान ज्ञान यज्ञ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अब तक पढ़ा कि भगवान ने इस भौतिक सृष्टि का सृजन क्यों किया और किस प्रकार किया, यानी कि भगवान ने इस भौतिक सृष्टि का सृजन अपनी शक्तियों को यूज करके किया है अपने एंजॉय के लिए, अपने आनंद प्राप्त करने के लिए, और उसको किस प्रकार से भगवान ने सृजन किया है। सब भगवान श्री कृष्ण का पहला एक्सटेंशन है बलदेव जी। बलदेव से संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, उसके बाद वापस से संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, उसके बाद वापस से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ऐसे करते करते 12 व्यूह निकले भगवान में से, और उनके बाद अंत में महाशंकर्षण से महाविष्णु प्रकट हुए। यहाँ तक समझ में आया था? और महाविष्णु जो हैं, उनको क्या कहते हैं? कारण दक्षाई विष्णु, कारण दक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना, लेकिन फिर भी हमें प्रमाण चाहिए, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ ना तो मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। ठीक है, जो भी बोल रहा है अगर वो एज इट इज शास्त्र की बात बोल रहा है तो वो सही है, उसको एक्सेप्ट, वो एक्सेप्टेबल है। आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, जो शास्त्र में लिखा है वही। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझ में और मेरे शागिर्दों, मेरे जितने भी शिष्य हैं उनमें करोड़ों गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो ज्ञान हम एज इट इज देते हैं ना, क्योंकि वो तो परंपरा से आया होता है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो हो सकता है इस चीज में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है। आप लोग ये इसकी कैसे प्रमाण होगा? हम शास्त्र को देखेंगे तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकेंगे इसको, और हमें अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान अब तक लेते आए हैं उससे हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ और ना ही हमारी आगे वाली जनरेशन को कोई फायदा होगा। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज हम गीता में इसके प्रमाण को ढूंढ रहे हैं, इसलिए आप सब अपनी भगवद गीता निकालिए। श्रीमद भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 8, नवा अध्याय श्लोक नंबर 8, पेज नंबर 304 हिंदी रीडर्स के लिए, और पेज नंबर 493 इंग्लिश जिसके पास भगवत गीता है उसमें। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृतिम स्वामवस्तभ्य विस्तृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य, यानी मेरी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रकृति है, विसृजामि पुनः पुनः, मेरी इच्छा से बारंबार पुनः पुनः उत्पन्न होती है। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्, यानी भगवान कहते हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान ने साफ साफ कहा यहाँ पर जो भी प्रकृति सृजन होता है और जो प्रलय होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छा से हो रहा होता है। जब मेरी इच्छा होती है तो मैं इसको प्रकट करता हूँ, और मेरी इच्छा होती है तो मैं इसका अंत में इसका नाश हो जाता है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृपया शास्त्र में देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। अपरा शक्ति मैंने बताई थी ना आपको, जिसमें 24 एलिमेंट्स थे, 24 तत्व, कौन कौन से? 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि, अहंकार और गुण। ये टोटल 24 तत्व जो होते हैं उसको अपरा प्रकृति बोलते हैं, महद ब्रह्म बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यह भौतिक जगत जो है अपरा शक्ति से जाहिर होता है। इसकी व्याख्या कई बार हो चुकी है, 7 चैप्टर में इसको बहुत अच्छे तरीके से भगवान बता चुके हैं, और उसके बाद भी ऐसा ऐसा हमें बताते गए हैं। और उसके बाद श्री प्रभुपाद जी हमें ये जो हमने अभी पढ़ा ना, सृष्टि किस तरह से निर्माण हुई है उसके विषय में बताते हैं कि क्या होता है। सृष्टि के समय यह शक्ति महातत्व के रूप में प्रकट होती है। अब ये वैसे तो इसको अपरा प्रकृति बोलते हैं, लेकिन जब भगवान को सृष्टि करनी होती है ना अपने इच्छा से, तो ये शक्ति जो अपरा शक्ति है वो महतत्व बन जाती है। महतत्व मैंने आपको बताया था ना, बहुत बड़ा एक कारण व समुद्र होता है, वो बन जाती है, प्रकट हो जाती है, जिसमें भगवान विष्णु अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। अब पहला उनका रूप कौन सा होता है? महाविष्णु। उसमें भगवान जो होते हैं ना, भगवान जो ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, वो प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में उस महतत्व में प्रवेश करते हैं और वे कारणव में शयन करते हैं। ये कारणव लिखा हुआ है ना, ये एक समुद्र है। अगर आप इंग्लिश में इसको देखोगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही लाइज विद इन द कोस्टल ओशियन, यानी एक समुद्र है, इसको कारणव कहा जाता है, उसमें लेटे हैं। कौन लेटे हैं? महाविष्णु, जिसको कारण धक्ष है। अब धक्ष कहते हैं समुद्र को, कारण बोलते हैं जो कारण बन रहा है, ऐसा समुद्र है। शाय मतलब शयन करना, तो कारण दक्षाय में शयन करते हैं। और क्या होता है, अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में, अब ब्रह्मांड निकल गए ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको समझ में आ गया था ना कि कारण दक्षाय विष्णु शयन करते हैं कारण समुद्र में, और उसके श्वासों से असंख्य अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भो दक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। अब हमने इसको शिरो दक्षाय विष्णु के नाम से बाय मिस्टेक बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने इस मिस्टेक को क्लियर किया और श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन में से ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड तो प्रकट हो गए ना, लेकिन ब्रह्मांड खाली प्रकट हुए, उनकी सृष्टि नहीं हुई है, उनमें कोई लोक नहीं है, उनमें कोई ग्रह नहीं है, उनमें कोई जीव नहीं है, उनमें कोई ब्रह्म नहीं है, उनमें कोई कुछ भी नहीं है। तो अब उनको बनाने के लिए भी कोई चाहिए, उस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए भी कोई चाहिए, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भो दक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। अब हर एक ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड बनाए थे, निकल रहे थे ना असंख्य, उनमें से हर एक में भगवान जो है वो गर्भो दक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर गए। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। जो सृष्टि मैंने बताई थी ना कि उसमें उनकी नाव से कमल निकलता है और 14 लोक निकलते हैं, ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने बताया था, एज इट इज है। सिर्फ मैंने उसका नाम क्षीरो दक्षाय विष्णु बताया था, लेकिन असल में ये जिसके नाव से ब्रह्मा जी निकलते हैं या ये 14 लोक निकलते हैं ना, वो गर्भो दक्षाय विष्णु है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैंने बताऊँ ये मिस्टेक कैसे हो गई, असल में ये बात मुझे पता थी कि गर्भो दक्षाय विष्णु है, लेकिन आजकल मैं वो टीवी सीरीज में मैंने देखा था कि जो क्षीर सागर में विष्णु भगवान बैठे होते हैं ना, उनकी नाव से ब्रह्मा जी निकल रहे थे, तो मैं माइंड में यही आ रहा था कि शीरो दक्षाय विष्णु जो होंगे ना, उसके नाव से ब्रह्मा जी निकलते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शीरो दक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं ना, वो नहीं होते हैं, उनके नाव से ब्रह्मा जी नहीं निकलते, गर्भो दक्षाय विष्णु जो होते हैं। अब यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भो दक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बात वही है, सिर्फ उसका नाम जिसकी नाव में 14 लोक हैं और ब्रह्मा जी हैं, उसका नाम गर्भो दक्षाय विष्णु है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरो दक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और उसके बाद उसी में क्या, क्षीरो दक्षाय विष्णु, क्षीर मतलब दूध, दक किसको बोलते हैं, समुद्र को, शाय मतलब शयन, यानी वो शीरो दक्षाय विष्णु जो होते हैं वो दूध के समुद्र में शयन करते हैं। ठीक है, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, और उसका क्या काम होता है, प्रत्येक वस्तु संसार के कण कण में, हर एक चीज में वो क्या करते हैं, यहाँ तक के प्रत्येक अणु, एक एक एटम में, एक एक मॉलिक्यूल में, एक एक चीज में, जितने कीटाणु हैं, जितने बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं जीव, सब में प्रवेश कर जाते हैं। वो कौन है, वो क्षीरो दक्षाय विष्णु है, और यहीं से सारे अवतार जो होते हैं ना, वो क्षीरो दक्षाय विष्णु से होते हैं। ठीक है, इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ पर भगवान ने, यहाँ पर हुई है इसी तथ्य की, पहले क्या थे गर्भो दक्षाय, पहले सबसे पहले क्या थे, भगवान ने एक्सटेंशन निकाले महाशंकर में से कारण दक्षाय विष्णु, कारण दक्षाय विष्णु में से गर्भो दक्षाय विष्णु, जो 14 लोकों या सारे ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, उसके बाद क्षीरो दक्षाय विष्णु कण कण में व्याप्त हो जाते हैं, इसी तथ्य की यहाँ पर व्याख्या हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। अब भगवान प्रत्येक वस्तु में किस प्रकार प्रवेश करते हैं उसी चीज को यहाँ पर श्लोक नंबर 10 में बताया जाएगा। अभी हम श्लोक नंबर 8 पढ़ रहे थे ना, अब श्लोक नंबर 10 को जरा देखिए। भगवान कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मायाध्यक्षेण प्रकृति, अक्ष कहते हैं आंख, अध्यक्ष कहते हैं इशारा, मेरे इशारे पर ये प्रकृति जो है, भगवान कहते हैं मेरे इशारे पर ही चलती है, यानी यह भौतिक सृष्टि मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और क्या करती है, हेतु नाने न कौनते या जगत भी परिवर्तते, जिसमें सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजन और विनष्ट होता रहता है। यानी कि भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो मेरे इशारे पर हो रहा है, संसार में जो प्रकृति सृजन हो रही है, भले किसी के द्वारा भी, अब भगवान बोल रहे हैं, मैंने भले ये डिपार्टमेंट किसी को भी दिया हुआ है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि मेरे इशारों पर चलती है ये सारी प्रकृति, क्योंकि मेरी शक्ति है। अब इस चीज को श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में इतना सुंदर समझा है कि हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। अब शुरू की चार लाइनें छोड़ के, शुरू की जो तीन लाइनें हैं ना वो छोड़ के चौथी लाइन में देखिए, भगवद गीता में भी कृष्ण यही कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। भगवान ने बता दिया कि सृष्टि भले कारण दक्षाय विष्णु से गर्भो दक्षाय विष्णु आए, गर्भो दक्षाय विष्णु से क्षीरो दक्षाय विष्णु आए, लेकिन भगवान ने साथ साथ 9.17 नवा अध्याय श्लोक नंबर 17 में कह दिया, पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह। तो भगवान यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें उसी बात को याद करा रहे हैं कि भगवान ने कह दिया है कि मैं ही पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से, चितवन कहते हैं सिर्फ आंख के इशारे से, जिस तरह भगवान को माता, यहाँ पर सांसारिक माता पिता की तरह संभोग करने की आवश्यकता नहीं है प्रकृति के साथ, साथ अब भगवान ने कह दिया मायाध्यक्ष एण, खाली मेरी आंख के इशारे से सब कुछ हो रहा है। तो श्री प्रभुपाद जी देखो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति में के गर्भ में जीवों को प्रकट करते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। ये भगवान यहाँ पर हमें वो बात याद करा रहे हैं जो उन्होंने 8.5 में बताई थी, अंतकाले जमा में, नहीं उसके बाद 8.6 में, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भाविता, के हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार प्रकट किस तरह होते हैं, अपनी अंतिम इच्छाओं, जो अंतिम इच्छा यम यम वापी स्मरण भावम, यानी मरते समय जो जो इच्छा की थी, या फिर कर्मों के अनुसार जो जो उन्होंने कर्म किए हैं, विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। भगवान करते हैं गर्भस्थ तो, लेकिन फिर भी जीव अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न हो रहे हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते हैं, यानी कि भगवान ने कर दिया अपना कार्य, लेकिन किसी चीज में भगवान की कोई आसक्ति नहीं होती है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार और अपनी अंतिम इच्छाओं के अनुसार नया जन्म लेता है, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। भगवान क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह प्रकृति जो है वो क्रियाशील हो जाती है और उत्पन्न हो जाते, कैसे, भगवान की अध्यक्षता से, भगवान के चितवन मात्र से प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है। ये भगवान जो ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं वो करते हैं ये सब, वही कहते हैं मैं आपका पिता हूँ। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 14 टेक्स्ट नंबर 3 14वां अध्याय श्लोक नंबर 3 में बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया। भगवान कहते हैं, मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 3 पेज नंबर 448 फॉर हिंदी रीडर्स एंड 725 फॉर इंग्लिश रीडर्स, जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 3 पेज नंबर 448 फॉर हिंदी रीडर्स एंड 725 फॉर इंग्लिश रीडर्स। इसमें भगवान कहते हैं मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यानी हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समस्त समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। यानी कि जो जन्म का स्रोत क्या है, जन्म किस चीज से हुआ है, जो ब्रह्म मैंने महत तत्व को ही ब्रह्म कहा गया यहाँ पर, वो स्रोत है, उसी से हो रहा है। और इस ब्रह्म के अंदर गर्भ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ मैं, उसके अंदर गर्भ स्थापित करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने एक लाइन सेंटर में लिखी है। देखो 1, 2, 3, 4 लाइनें छोड़ के पांचवी लाइन में देखो, परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करता है। यही बात बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, जो महतत्व बनाया, उसको गर्भस्थ करता है जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की दृष्टि मात्र से है। इसी चीज को यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने क्लियर किया। अब इस चीज को छोड़ दो और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना, सेकेंड वाला, उसमें इसको बहुत ही सुंदर एक मिसाल देके किया है कि भगवान ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं और ये महातत्व को गर्भस्थ करते कैसे हैं। इसके लिए श्री प्रभुपाद ने एक मिसाल दी है। वहां पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, बिच्छू अपने अंडे दान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू दान से उत्पन्न हुई है, लेकिन दान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। यानी कि असल में क्या होता है, वो अंडे जो है वो दान के ढेर में चली दे देती है, ठीक है। और जब बिच्छू उत्पन्न होता है तो ऐसा लगता है कि वो बिच्छू है ना, ऐसे ही जैसे कभी कभी हम लोग है ना अपने घर में भी चावल की बोरी होती है या फिर सामान आटा वगैरह होता है, अंदर रख दें और एक दो महीने के बाद उठाएं तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हो जाते, तो हम क्या बोलते हैं, चावल के अंदर कीड़े आए, पहले नहीं थे लेकिन आ गए। यानी कि चावल ही उनके उत्पन्न का कारण है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसके अंदर इनके अंडे पहले से ही पड़े हुए होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन दान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। अब उसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। यानी कि संसार में संसारिक वस्तुएं जो भी हैं, ये महत्त्व जो है, जो 24 एलिमेंट्स हैं, वो कभी भी जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान ने कहा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, मैं उसको गर्भस्थ करता हूँ, तो बीज भगवान के द्वारा प्रदत्त है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। लगता ऐसा है कि संसार में प्रकृति से प्रकृति, हम ऐसे बोलते हैं ना, इसने इसको जन्म दिया या इसके घर में बच्चे का जन्म हुआ, वास्तव में वो प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं भगवान। इसीलिए तो कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित है। जो जो कर्म किए होते हैं उसको जन्म मिलता है, जिसके कारण जीव अपनी पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन को भी क्लियर किया श्री प्रभुपाद ने कि सुख और दुख देने वाला भगवान नहीं है, आपके कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि आपको सुख मिले तो इस तरह के कर्म भी करो। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। यानी जो कुछ भी संसार में है उसके कारण अभिव्यक्तियां, जो भी संसारिक मुजाहरा जो आपको नजर आ रहा है उसके कारण भगवान, जो गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, वही कारण दक्षाय विष्णु में से गर्भो दक्षाय विष्णु, फिर शिरो दक्षाय विष्णु कण कण में व्याप्त कर देते हैं और महत तत्व को गर्भस्थ कर देते हैं और जो जो हमने कर्म किए हैं उनके अनुसार उनको अलग अलग योनियां मिलती हैं। अब इसके साथ साथ ये श्लोक आ गया है 14.4 को, तो जरा सा देख लेंगे तो फिर इस टॉपिक को अब यहाँ पर मैं वाइंड अप करना चाहती हूँ। सारा क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। श्लोक नंबर 14.4 14 अध्याय श्लोक नंबर 4 भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीज प्रदपिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति है, भगवान कहते हैं तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संबंध है, जन्म से ही संबंध हुई है। और जन्म कैसे हुआ है, भगवान कहते हैं तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता, और मैं ही उस जन्म को उसके जन्म का कारण यानी बीज देने वाला पिता मैं हूँ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान ने कहा अहम बीज प्रदपिता, मैं देता हूँ बीज देने वाला पिता मैं हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं, यानी कि संसार में जो कुल भी है। अब भौतिक प्रकृति क्या है, 24 तत्व जिसको महद ब्रह्म कहा जाता है वो भौतिक प्रकृति है, ठीक है, इसको अपरा प्रकृति भी कहते हैं। और आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, परा प्रकृति यानी जीव आत्मा। जब ये दोनों मिलते हैं तो सारे जीव, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में है, मैंने आपको 14 लोक के विषय में बताया, ये तो हमारे भौतिक ब्रह्मांड के लोक थे, इसके अतिरिक्त भी जितने जितने लोक हैं वहां पर ऐसे जीव हैं। यहाँ तक के सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। अब जो जितने ऊपर टॉप का कौन सा मैंने लोक बताया, ब्रह्मलोक बताया ना, सत्यलोक, उसमें भी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे जीव हैं। कैसे जीव हैं, जो जिनके आध्यात्मिक और भौतिक शरीर होते हैं, उनका अलग होता है, हमारा ये पंचभूत वाला होता है, उनका सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन ये दोनों होते हैं। जब तक ये शरीर में से आत्मा नहीं खत्म, मतलब ये इसका चक्कर खत्म नहीं होता, जब तक वो गोलोक वृंदावन धाम में वापस नहीं चली जाती, ऐसे ही अलग अलग लोकों में भटकती रहती है जब तक कि उसको अपना लक्ष्य यानी कृष्ण लोक या फिर मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर बताया जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर जीव नहीं रहते। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। इनके कारण क्या है, माता भौतिक प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है जिसको अपरा प्रकृति या महद ब्रह्म कहते हैं, वो और उनके पिता कौन है, कृष्ण, जो उस प्रकृति पर महतत्व पर दृष्टिपात करते हैं, वो दोनों के संयोग। इनका कारण क्या है, ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, ये भौतिक जो जगत है, भौतिक महतत्व जो भौतिक प्रकृति है, वो सारे जीवों को अपने गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही विविध रूपों में प्रकट होते हैं। और जब सृष्टि होती है उस टाइम पर पूर्व कर्म, ये शुरू से चल रहा है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूं कि जब प्रलय होता है ना, जब प्रलय होता है यानी एक प्रलय दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रलय होता है जो चार युगों के बाद होता है, सत्युग कलयुग द्वापर और त्रेता और द्वापर, सत्युग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, कलयुग के बाद प्रलय होता है, ठीक है। प्रलय में क्या होता है, सारे जितने जीव हैं जिन्होंने जो जो कर्म किए थे, अब जिन्होंने भगवान की भक्ति की थी, मतलब सब मर जाते हैं कुछ भी। अब जैसे कल की अवतार आएंगे ना, वो विदाउट मर्सी सबको मार डालेंगे, क्योंकि सब अपराधी होंगे, सबको मार डालेंगे। अब सब मर गए, अब सब मर गए तो प्रलय होगा। अब इन सबको कहाँ डालना है, यानी क्योंकि अब इनको कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग में तो चलो ठीक है चले गए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन शीने पिंड ने मृत्यु लोक कमीशन थी तो मृत्यु लोक तो खत्म हो गया, उस टाइम पर प्रलय हो गई थी। फिर क्या होता है, जब तक वापस से भगवान सृजन नहीं करते, सृष्टि उत्पन्न नहीं करते, तो जो कारण दक्षाय विष्णु थे ना, वो बड़े बड़े थे, वो उनके अंदर समा जाते हैं। ये सारे जीव जिन्होंने अपने कर्म अभी तक कम्प्लीट नहीं किए हैं, वो सारे उन कारण दक्षाय विष्णु के शरीर में समा जाते हैं। फिर जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो कारण लक्षण विष्णु क्या करते हैं, सांसों से ब्रह्मांड निकालते हैं, और जब भगवान मतलब ब्रह्मा जी दूसरे दूसरे प्राणियों को उत्पन्न करते हैं तो फिर जो जो जिन्होंने जो जो कर्म किए थे उनके अनुसार उनको अलग अलग योनियों में डाल दिया जाता है। और भगवान ने ये पहले से ही डिसाइडेड है, ये 84 लाख योनियां हैं, ब्रह्मा जी को भगवान ने यही आदेश दिया था कि 84 लाख योनियां आप बनाओ और उसमें अलग अलग जितने भी हम कर्म करते हैं उनके अनुसार हमको जन्म लेना पड़ता है। इस तरह से सारे जीव कारण दक्षय विष्णु में हो जाते हैं, फिर वापस से जब सृष्टि होती है, सतयुग होता है, द्वापर युग है, उसके बाद है ना त्रेता युग, उसके बाद कलयुग, ऐसे करते 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 जब महाप्रलय होता है ना, जब महाप्रलय होता है तब ये सारे नष्ट हो जाते हैं, कारण दक्षय विष्णु वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं, तब खाली खाली गौला वृंदावन धाम रहता है और वहां पर होता है। फिर वापस से जब भगवान को सृष्टि उत्पन्न करनी होती है तो वापस से फर्स्ट एक्सटेंशन निकलता है। बलदेव जी, बलदेव से संकर्षण, ऐसे ये सर्कल घूमता रहता है। और ये भगवान की सृष्टि है, इसको सुन लेना है, अभी इसके ऊपर ज्यादा हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि इसमें आएगा टॉपिक और ये भगवान ने कैसे किया, क्योंकि हमें तो करना नहीं है तो उसको खाली सुन लिया कि भगवान ने कैसे किया है, अच्छी बात है अगर समझ में आ गया, वरना ये क्योंकि अभी शुरुआत है और आहिस्ता आहिस्ता जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो हर एक चीज को श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत क्लियर बताते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक पर हमारा एक अंतिम प्रश्न जो मैं चाहती हूँ कि इसको क्लियर किया जाए कि यदि भगवान एक ही है, सब कुछ उत्पन्न करने वाला अकेला कृष्ण है, तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? और अगर इतने सारे धर्म हैं तो सच्चा धर्म कौन सा है और हमें कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? ये बहुत ही एक ऐसा सवाल है जो कि हमें जरूर सॉल्व करना चाहिए कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह बिल्कुल सही है अथवा नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर तो हमारे मोक्ष का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो श्लब यहाँ पर कहते हैं, वास्तव में अगर मैं आपको सही सही बात बताऊं, देखा जाए तो सभी धर्म सच्चे हैं। सच्चे क्यों हैं? क्योंकि ये किसी न किसी लिंक से जुड़े हुए हैं। गलत कोई धर्म नहीं है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी गलत धर्म नहीं होता। आप देखिए, इस बात को समझिए, सभी धर्म सच्चे हैं परंतु सभी धर्म के लेवल में अंतर है। अब कुछ धर्म थोड़े निम्न स्तर के हैं, कुछ ऊपर के हैं और कुछ उनसे भी ऊपर के हैं, और उनसे ऊपर के हैं जो टॉप मोस्ट पर हैं, यानी कि लेवल अलग है लेकिन सही है, गलत कोई भी धर्म नहीं है। अब धर्म का क्या मतलब होता है? जो टॉप मोस्ट धर्म है ना, वो बताऊं कौन सा है, जिससे ऊपर कोई और धर्म हो ही नहीं सकता, वो धर्म है सनातन धर्म, सबसे उच्च धर्म। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि सबसे सच्चा धर्म कौन सा है, क्योंकि सच्चे तो सभी हैं, परंतु ये कहा जाएगा कि सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है, सबसे ऊंचा लेवल कौन सा है, और वो है सनातन धर्म। इस संसार में अब मैं आपको बताऊं, सबसे बड़े तीन धर्म हैं, कौन कौन से? इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू और सिख। हाँ, चार धर्म अगर बोला जाए तो चार धर्म है, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। ये सारे धर्म योग्य देश, योग्य काल और योग्य पात्र के अनुसार बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं अब ये किस तरह बने हैं। क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत कब हुई जानते हैं आप? आज से 2000 वर्ष पहले। उससे पहले क्रिश्चियन धर्म नहीं था। मुसलमान धर्म की शुरुआत कब से हुई? आज से 1550 वर्ष पहले। इससे पहले क्या था? ऐसा हम यहाँ पर रहते हैं ना, तो यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है कि आज से 1500 साल पहले अरब में सारे लोग बुतों की पूजा करते थे, यानी कि उस टाइम पर विग्रह पूजा होती थी, सनातन धर्म का पालन होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने विग्रहों का खंडन कर दिया और लोगों को जबरदस्ती अपने धर्म में डाल दिया। भारत उसके में यहाँ पर कोई धर्म को गलत नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ ये कि हुआ कैसे। मुसलमान धर्म की शुरुआत हुई आज से 1550 साल पहले। उसके बाद सिख धर्म की शुरुआत तो बस 500 साल पहले हुई है, उससे पहले नहीं था। और सनातन धर्म की शुरुआत कब से हुई जानते हैं आप? जब से ये संसार बना है तब से ही सनातन धर्म की शुरुआत, तब से सनातन धर्म है। अब इन धर्मों के लेवल में कैसे अंतर है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, 2000 साल पहले जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो उन्होंने देखा कि संसार की हालत बहुत नाजुक है, सब लोग मूढ़ हैं, सब लोग इतने अत्याचारी हैं, इतने पापी हैं, इतना भी ज्ञान नहीं है कि मनुष्य को भगवान ने वेजिटेरियन बनाया। सब लोग गाय का वध करते थे, मांसाहार करते थे, यहाँ तक कि मनुष्य को भी मार काट कर खा जाते थे। ऐसी भीषण स्थिति में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। यदि ऐसी स्थिति में जीसस क्राइस्ट कहते कि आप लोग ये सब मत करो, कांदा लहसुन नहीं खाओ, चाय कॉफी मत पियो, यदि इतना बड़ा सिद्धांत लोगों के समक्ष रखते तो सब लोग उन्हें ही मार डालते कि आया है बड़ा उपदेश करने वाला। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने सोचा कि एक साथ इतना बड़ा, डायरेक्ट से इतना बड़ा उपहार नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे इन सबको धर्म के अनुसार आचरण करना सिखाया जाए। तो फिर जीसस क्राइस्ट ने कहा कि ये सब ठीक है, आप पाप करते हो ना, तो संडे टू संडे एक बार, मतलब वंस अ वीक चर्च में जाओ और फादर के सामने अपने आपने जो भी पाप किए हैं उनको बयान करो, आप अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। यानी कि वो ये सोच रहे थे कि जब वो अपना अपने अपराधों का किसी के सामने बखान करते हैं तो हमें शर्म आती है ना, तो बोला कि मानो कि ये पाप है और जाके आप इसको कबूल करो। एटलीस्ट संडे टू संडे सब चर्च में जाने की प्रणाली शुरू हुई, अपने पाप दोहराने की प्रणाली शुरू हुई। और जीसस क्राइस्ट सोचते थे कि आगे चलकर धीरे धीरे मैं सबको सुधार दूंगा और सबको सनातन धर्म तक पहुंचाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ परंतु फिलहाल आप उसको नहीं समझ सकते। वो बहुत कुछ जो बताना चाहते थे वो क्या था? सनातन धर्म। तो धीरे धीरे वो उपदेश देते जा रहे थे, परंतु जब तक वो सबको शुद्ध करके सबको सनातन धर्म के स्तर पर लाकर खड़ा करते तब तक तो बेचारे को सूली पर चढ़ा दिया गया और वो चल बसे। तब क्या हुआ? उन्होंने अपने जीवन में जो जो उपदेश दिया था उसको संकलित करके लिपिबद्ध कर दिया गया, उसको बुक्स बना दी गई और उसको शास्त्र बनाकर उसी को धर्म ग्रंथ बनाया गया और वही धर्म बन गया। कौन सा? क्रिश्चियन धर्म। वास्तव में पूर्ण धर्म नहीं था। जीसस क्राइस्ट तो धीरे धीरे सुधारना चाहते थे, वो पूर्ण चीज किसी को नहीं बताई। तो ये क्रिश्चियन धर्म जो है वो सत्य तो है परंतु पूर्ण नहीं है, अधूरा ज्ञान है और अधूरे तक ही पहुंचा है। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद पैगंबर जब आए 1550 साल पहले, उस समय भी यही स्थिति थी। फिर मोहम्मद पैगंबर ने सोचा कि इनको धीरे धीरे सुधारना है, तो सबको कहा कि आप एक काम करो, पशुओं का वध भले करो परंतु उनको हलाल करके खाओ। उन्होंने सोचा कि इस तरह से पशुओं को तड़पता हुआ देखेंगे तो कभी ना कभी तो उनको दया आ जाएगी। और उन्होंने ये भी उपदेश दिया कि आप जो ये काम कर रहे हो वो ठीक है परंतु 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 1 महीना उपवास रखो, रमजान का महीना जो है ना वो रोजा रखो। तो वो ये समझ रहे थे, मतलब मोहम्मद पैगंबर चाहते थे कि धीरे धीरे सबको लाइन पर ला लूंगा, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे तो उनका हृदय पवित्र होगा, तो उनको समझ में आएगी ना। पवित्रता उनके हृदय में थी नहीं तो उनको डायरेक्ट से सनातन धर्म समझ में ही नहीं आएगा। परंतु सबको लाइन पर लाने से पहले वो स्वयं ही चल बसे और फिर उन्होंने जो बताया सबने उसी को स्टैंडर्ड बना दिया। कोई व्यक्ति एक दिन की, अब ये कैसे है कि देखो एक अगर व्यक्ति है उसको सिगरेट पीने का बहुत शौक है, वो एक दिन में अगर 100 सिगरेट पीता है तो क्या होगा? वो अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा उसको बहुत ज्यादा उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उसको टीबी का मरीज होने वाला है, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको डायरेक्ट से बोलेगा ना कि आप 100 सिगरेट नहीं पियो, आप बस सिगरेट पीना छोड़ दो, छोड़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए डॉक्टर उसको पहले बोलता है कि देखो आप है ना 100 सिगरेट पीते हो ना, 100 सिगरेट नहीं पियो, आप कल से सिर्फ 50 सिगरेट पियो, देखना 50 सिगरेट पियोगे ना तुम्हारी सारी बीमारी कैसे दूर होती है। तो वो उसको कम करने की कोशिश करेगा और फिर कल से उसने 50 सिगरेट पीना शुरू कर दिए। और डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई तुम 15 दिन के बाद मुझे वापस दिखाने आना। जब 50 सिगरेट पीना शुरू किया और डॉक्टर के पास 15 दिन के बाद आए, डॉक्टर ने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि आपका मर्ज तो आधा गायब हो गया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ही अच्छा आपने किया है, बहुत जबरदस्त आपने ये किया है, अब आप ऐसा करो 20 सिगरेट और भी कम कर दो, 30 सिगरेट पियो, देखना फिर तो आपको समझो मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो उसको बहुत खुश हो गया और घर पे गया और 30 सिगरेट पीने लगा। लेकिन फिर वापस डॉक्टर ने उसको 15 दिन के बाद बुलाया तो फिर गया तो डॉक्टर ने कहा कि बस अभी 4 गोलियां भी, जो पहले आप 8 गोलियां लेते थे अब 4 गोलियां कम कर दो, आपका बिल्कुल सही जा रहा है। आप ऐसा करो ये जो 20 सिगरेट अभी क्या करो, आप 30 सिगरेट पीते हो ना, उसमें से 10 और कम कर दो। कल से सिर्फ 10 सिगरेट पियो और बस दवाइयों में ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, आपका प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। 10 सिगरेट तुम पी सकते हो। डॉक्टर तो सब बंद कराना चाहते थे, परंतु अभी तक दूसरे दिन जब गए उसको बोला कि भाई आप ऐसा करो कि 15 दिन के बाद मुझे दिखाने आना। तो जब वो डॉक्टर के पास गया 15 दिन के बाद, तो डॉक्टर मर गए थे। अभी डॉक्टर तो सब बंद कराना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो बंद कराने से पहले ही मर गए, तो उसने सोचा कि बस अब 10 सिगरेट तो मैं पी ही सकता हूँ क्योंकि डॉक्टर कह के गए, इसीलिए इसने इसको स्टैंडर्ड बना दिया और इसी को आदर्श बना दिया। वैसे ही जीजस और मोहम्मद पैगंबर जो थे वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, परंतु संपूर्ण ज्ञान देने से पहले ही चले गए, तो उन्होंने इसे ही आदर्श यानी स्टैंडर्ड बना दिया। उन्होंने जो उपदेश दिया वो गलत नहीं था, परंतु देश काल पात्र के अनुसार जो मनुष्य पशुओं के स्तर पर आ गए थे और मनुष्य को इस पशुओं के स्तर से पहले मनुष्य के स्तर पर लाना चाहते थे, परंतु जो लोग ऑलरेडी मनुष्य के स्तर पर हैं, जो सभ्य मनुष्य हैं, जो वैसे ही स्टैंडर्ड सिविलाइज हैं, उनके लिए ये सारे धर्मों की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, जैसे हरिदास ठाकुर ने किया, कीर्तनानंद स्वामी जगत गुरु भक्तिपाल जी ने किया, क्योंकि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ धर्म, सबसे उत्तम धर्म सनातन धर्म है। आज अगर हमारा कोई बच्चा कोई दूसरे जन्म दूसरे किसी मजहब में मतलब चेंज कर लेता है अपना मजहब, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? इस बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो गलत कर रहा है, वो वास्तव में हमारे धर्म का है लेकिन अपना दूसरा धर्म चेंज कर देता है, तो उसको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। उसी तरह से वास्तव में ये जितने भी जीव हैं वो आज से 2000 साल पहले सब सनातन धर्मी थे, तो इनमें से किसी को भी एक्सेप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं है, क्योंकि वो सब ने अपना मजहब चेंज किया अपनी ख्वाहिशात को, अपनी इंद्रिय तृप्ति की खातिर, अपने ना हवस को पूरा करने के लिए। और बाकी सब जो धर्म है वो गलत नहीं है। अब उसके बाद भगवान ने जब देखा कि उन्होंने चलो ठीक है धर्म अपना लिया है, तो उसी धर्म के अनुसार, क्योंकि भगवान जो है वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, ठीक है, उसी धर्मों के अनुसार अलग अलग पैगंबर भेजे, अलग अलग नबी भेजे, तो वो गलत नहीं है, वो सही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो कम्प्लीट नहीं है। कुछ धर्म शरीर के लेवल पर है, कुछ समाज सेवा में मानते हैं, परंतु ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म जो है वो सनातन धर्म है। क्यों सनातन धर्म की मैं इतनी कर रही हूँ? क्योंकि ये जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई, जीवों की उत्पत्ति की, तब से सनातन धर्म भी बनाया। सनातन धर्म किसी देश काल परिस्थिति या मानव के इंद्रिय तृप्ति को या फिर उनकी किसी अभिलाषा को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, करोड़ों वर्षों से है, और इससे उत्तम धर्म कोई और हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए। सनातन धर्म का पहला अर्थ, धर्म का अर्थ है वो चीज जिसको अपने गुण से कभी अलग नहीं किया जाए, यानी आप ऐसा गुण आपके अंदर जिसको आपसे कभी दूर ना किया जाए। जैसे शक्कर का गुण है मीठा होना, तो ये शक्कर का धर्म है मीठा होना। अगर शक्कर से स्वीट बना निकाल दिया जाए, मीठा बना निकाल दिया जाए, कुछ शक्कर बचेगी? नहीं। उसी तरह से नमक का गुण क्या है? खारा होना। अगर नमक जो है उसमें से खारापन निकाल दिया जाए तो नमक क्या बचेगा? वैसे ही जीव आत्मा का धर्म है प्रेम करना, और अगर जीव आत्मा में से प्रेम का स्वभाव निकाल दिया जाए तो ये आत्मा बचेगी? बिल्कुल नहीं। तो वास्तव में आत्मा का धर्म है प्रेम करना, क्योंकि आत्मा सनातन है। अब प्रेम किससे किया जाता है? जो आपसे मैच करता हो। आत्मा सनातन है और सनातन आत्मा सिर्फ सनातन वस्तु से ही प्रेम कर सकती है। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, ना खत्म होने वाला, जो कभी खत्म नहीं होता। और भगवत गीता में और ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, यदि आप किसी शरीर से प्रेम करते हो या शरीर से रिलेटेड किसी चीज से प्रेम करते हो तो वो तो सनातन धर्म नहीं होगा। सनातन है ये आत्मा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 2.22 में, अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर है। ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा कभी नहीं मरती, तो आत्मा सनातन है और सनातन वस्तु से ही प्रेम कर सकती है, वे नाशवंत वस्तु के साथ कभी प्रेम नहीं कर सकती। तो सनातन धर्म का अर्थ है सनातन आत्मा के द्वारा सनातन परमात्मा के साथ अपने प्रेम को उजागर करना। ये है सनातन धर्म, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण के प्रेम जो मैं रोजाना आपको बोलती हूँ, हम पढ़ते हैं सुबह को भगवद गीता, हम जो भक्ति करते हैं यदि उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और प्रेम में तो स्वतः सेवा होती है। प्रेम का मतलब क्या होता है? आप किसी से प्रेम करते हो उसको कैसे साबित करोगे? जैसे आप अपनी माँ को बोलो कि ठीक है मम्मी मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूँ, लेकिन आपको भी मुझसे कोई ऑर्डर नहीं करना कि ये करो ये करो ये करो, इस बात इससे प्रेम कहते हैं क्या? जैसे अगर माँ को बोले कि भाई माँ बाप को बोले आपकी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ लेकिन मुझे बोला नहीं करो, ये नहीं करो वो नहीं करो वो नहीं करो, उससे प्रेम नहीं कहते। प्रेम का मतलब होता है कि आप उसके आदेशों का पालन करो। यदि कोई पत्नी बोलती है कि भाई देखो मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन अपने ऑर्डर वगैरह मेरे को नहीं दिया करो, ये बना के दो वो बना के दो, प्रेम का मतलब होता है स्वतः सेवा। एक विलिंगली जो सर्वेंट होते हैं ना हम, जिसके समझो जैसे माता का प्रेम, देखो छोटा बच्चा होता है माता उससे प्रेम करती है, वो अपनी हर खुशी को त्यागने के लिए तैयार होती है। यदि पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो अपनी हर ख्वाहिश का परित्याग करने के लिए तैयार होती है। तो प्रेम में स्वतः सेवा होती है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है तत्सुख सुखित्वम। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वास्तव में शास्त्र प्रेम को कहते हैं, शास्त्र में प्रेम का मतलब क्या बताया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा सही प्रेम नाम। यदि आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हो तो वो प्रेम नहीं है, सनातन धर्म नहीं है वो। अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति बोलता है कि इससे मुझे कोई प्रसन्नता हो रही है तो वो सनातन धर्म को सही तरह से पालन नहीं कर रहा है। इंद्रियों को तृप्त करना सनातन धर्म नहीं है, कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना यही सनातन धर्म है। नित्य जो धर्म नित्य बना रहे उसे कहते हैं सनातन धर्म। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि माता की सेवा करना सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म। पिता की सेवा करना ये है सनातन धर्म। देश की सेवा करना ये है सनातन धर्म। पत्नी की, पति की, सास की, ससुर की, परंतु वास्तव में ये सब की सेवा करना कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो बदले नहीं, वो एक बना रहे। सनातन का मतलब होता है इटरनल, जिसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं आया। जैसे आज यदि कोई अपनी माँ की सेवा कर रहा है, यदि मर गया तो दूसरे जन्म में दूसरी माँ मिलेगी तो उसकी सेवा करनी होगी। जिसके प्रति धर्म का पालन कर रहा है वो तो बदल रहा है, तीसरे जन्म में तीसरी माँ मिलेगी, चौथे जन्म में चौथी माँ मिलेगी। अब जो बदल रहा है वो सनातन धर्म कैसे हो सकता है? सनातन धर्म का मतलब है नित्य बना रहे। जैसे श्री प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि देश की सेवा करना ही सनातन धर्म है, परंतु भारत देश की सेवा कर रहा है, आज अगर भारत में है और मर गया, कल पाकिस्तान में जन्म हुआ तो आज भारत की सेवा कर रहा है, कल उसको पाकिस्तान की सेवा करनी पड़ेगी, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ है जो नित्य बना रहे। एक ही वस्तु और एक और वस्तु, वास्तव में सनातन धर्म का अर्थ है सनातन अंश, अपने पूर्ण भगवान की भक्ति करे। क्योंकि भगवान वो है जो सब काल देश में सब परिस्थितियों में एक ही बना रहता है। ये वही कृष्ण है जिसने संपूर्ण सृष्टि को पैदा किया, ये वही कृष्ण है जिसने महद्धम में घर विकसित किया, वो वही कृष्ण जो कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो आज कोई कृष्ण की सेवा करता है तो आने वाले जन्म में भी उसकी सेवा कर सकता है। 10 जन्मों के बाद, 100 जन्मों के बाद, 1000 जन्मों के बाद, जब जितने जन्म होते हैं कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो ये जो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म है, और बाकी सब जो धर्म है वो इस सनातन धर्म के नीचे स्तर पर आते हैं। कुछ लोग नर्सरी में हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ सेकंड में हैं, कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर आएंगे। और भगवान कहते हैं, देखिए हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। आप बोलते हो ना, कल कोई ऐसा क्वेश्चन आया था, कोई मुसलमान धर्म में जन्म ले लिया। मुसलमान धर्म ही बना सनातन धर्म की एक ऐसी शाख है जो कि सनातन धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक अपना धर्म अलग से बना दिया। क्रिश्चियन धर्म भी सनातन धर्म जो है उसके हिसाब से नहीं चलना चाहते थे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है वो है तपस्या। यहाँ बताया कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत जायता, इस पे टिका हुआ है कि आपका ये जन्म जो है वो काम इंद्रियों को पूरक करने के लिए नहीं बना है, सिर्फ जियो और क्या करो, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इस सिद्धांत को नहीं पालन कर सका, इसलिए जीव ने क्या किया, उस सनातन धर्म से निकल गए और दूसरा धर्म बना दिया। हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी, जो रियल सनातन धर्म भगवान ने बताया, उसमें कहीं पर भी इंद्रिय तृप्ति की आपको छूट नहीं दी जाती है। इसलिए मनुष्य इतना पावर्स है उसमें कि वो इस सनातन धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकता है, वो ये नहीं समझ सकता कि जब ही मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए भागता रहूंगा, क्योंकि भगवान ने इसलिए नहीं बनाया ये रूल कि आपको दुखी कर सके, बल्कि भगवान ने ये रूल इसलिए बनाया ताकि आपको सुखी कर सके। हम अपनी मर्जी से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुखी होना चाहते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि आपका सुख तभी, आपको तभी सुख प्राप्त होगा जब आप मुझे संतुष्ट करोगे। आप अपने आप को संतुष्ट करके, हाथ खाकर कभी खुश नहीं हो सकता, हाथ की खुशी तभी है जब वो मुंह में निवाला डाले। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं 7.19 में कि बहुत सारे जन्मों के बाद जब तुम्हें ये अकल आ जाएगी, भगवान कहते हैं भवनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी कि बहुत सारे जन्मों में अलग अलग धर्म में तुम अलग अलग कार्य करते रहोगे, और इस तरह बहुत बहुत जन्मों के बाद जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर मेरे पास आ जाएंगे और सोचेंगे, क्या कहेंगे, वासुदेव सर्वम इति, वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है, केवल भगवान की भक्ति करना, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देना। वही व्यक्ति जो ऐसा समझना शुरू करता है उसके लिए भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभम, ऐसा महात्मा, भगवान ने उसको महात्मा की पदवी दी है और कहते हैं ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में भगवान की निगाह में अगर अच्छे बनना चाहते हैं तो केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। यही सनातन धर्म है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, छोड़ो तुमने जो अपने अपने इंद्रिय तृप्ति, अपनी अपनी हवस को पूरा करने के लिए जो जो धर्म को अपना लिया है उसको छोड़ दो और सिर्फ माम एकम श्रम वजा, मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे सारे अपराधों को नाश कर दूंगा, तुम्हें किसी कोई आंच नहीं आने दूंगा, तुम खाली मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मासुच, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। वो जगह जिस पर जाने जाकर तुम्हारे लिए कभी भी दुखों भरे जन्म में आना बाकी नहीं रह जाएगा, उस जगह पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सब सारे धर्मों को छोड़कर सनातन धर्म, मेरे धर्म यानी भगवान को खुश करना, भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति इस कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी साहब साहब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, आपको मोक्ष भगवान यानी परम गति का कोई भी तरीका नहीं है। तो यहाँ तक हमने भगवान और सनातन धर्म को साबित किया। अब इतना मैंने आप सबको बताया है, इसके बदली में मुझे एक चीज आपसे चाहिए, यदि आप इस योग्य समझते हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि क्योंकि अब हमें समझ में आ गया कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में जन्म क्यों दिया है और हमारे जीवन का क्या कारण है, तो हमें भगवान के नाम का जप शुरू करना चाहिए। तो आप में से जो जो जप नहीं करते हैं वो आज से 4 माला एक लिस्ट करेंगे, आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज से 4 माला एक लिस्ट, आज एकादशी का दिन है और आप सबसे में प्रार्थना करें, क्योंकि हम अब पता चल गया ना कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो हमें उस लक्ष्य की ओर अग्रसर कर आना है। और आज के इस युग में हमारे लिए भगवान से नाम के बढ़कर और कोई भक्ति नहीं है, यदि हम श्रवण भी कर रहे हैं उसके साथ कीर्तन नहीं कर रहे, भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। इसलिए जैसे एक मैं छोटी सी मिसाल दूं, आपको अगर कहा जाए कि भाई ये बटन बंद कर दो तो लाइट सेव होगी, सारे पंखे चल रहे हैं, बटन बंद कर दो, बटन बंद कर दो, बटन बंद कर दो, आप बोलो हाँ ठीक है बिल्कुल सही बोल रही है, अगर बटन बंद कर दूंगी तो लाइट सेव हो जाएगी, लेकिन अगर बटन बंद नहीं करोगे तो लाइट सेव नहीं होगी। उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन तभी सफल होगा जब जप करो, जब जप करो, जब जप करो, आप बोलोगे हाँ ठीक है बिल्कुल जप करना चाहिए, लेकिन यदि स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ सेव नहीं होगी, आप परम गति की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। तो आज से आप में से जो जो जप नहीं करते हैं उनके लिए ये प्रार्थना है कि वो एटलीस्ट 4 माला आज से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आज ये बताएंगे सब कि हम कितनी कितनी माला करते हैं। हरि बोल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।